6-7।
जिंदगी की सबसे अहम जरूरत पानी।
पाकिस्तान के उन इलाकों में जहां पानी की अशद जरूरत है, जुनेद जमशेद मरहूम ने शुरू किया ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन। इसका मकसद सोलर वाटर प्लांट के जरिए पीने के साफ पानी की फराहमी। आइए आप इस कार्यक्रम में शामिल हो, अपना नाम अमर कर दीजिए 19 जुलाई जुमे के दिन 7:70 AM पर डोनेट जेनरसली फॉर सोलर वाटर प्लांट।
ज्वाइन 7:70 AM 4 to 5 PM फ्राइडे जुलाई 19।
4164171 71 71
Canada, be ready to witness this November 2019, Pakistan's biggest rock band returns to Toronto after 15 years. After the grand success in Pakistan, UAE, UK and 8 back-to-back concerts in USA, Rehan Siddiqui and GOTV presents Junoon Comeback Tour. Friday, November 1st, CAA Centre, Toronto. Tickets available online, Suleika and Hangama City.
This is Rehan Siddiqui presenting the Junoon Comeback Tour. Only one show in Canada and that also in your city, Toronto. For group tickets, meet and greet, you can call me at 713-545-4115. Aap apni tickets ko select bhi kar sakte hain by going online to ticketmaster.ca. Toronto, don't miss the only show in Canada. An event by Extreme Media.
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9054551666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
कुछ पल इंसान की जिंदगी में पहली बार आते हैं, इसीलिए आप सिर्फ उन लम्हों को जिए, बाकी हम पर छोड़ दें। 20 साल का वसी तजर्बा लिए हम हैं वुडबाइन बैंक्वेट एंड कन्वेंशनल हॉल। शानदार इंटीरियर, लार्ज हॉल्स, स्टेट ऑफ द आर्ट गेस्ट रूम्स और एक्सपर्ट शेफ्स का अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनाए आपके हर लम्हे को हमेशा यादगार। वुडबाइन बैंक्वेट हॉल, 30Y सृजंट बुलेवार्ड, टोरंटो। बुकिंग और रिजर्वेशन के लिए अभी कॉल करें 416-743-0003।
आयशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों, एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा। 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
जी सामने करा, वेलकम बैक टू रेडियो साजो आवाज़। 5:56 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं। केडियो होम्योपैथिक की बात कर चलूँ, केडियो होम्योपैथिक वन ऑफ द हाईली एक्सपीरियंस नॉर्थ अमेरिका, ये जो है वॉक इन होम्योपैथिक क्लिनिक, 40 years का एक्सपीरियंस इनके पास है साहब। रजिस्टर्ड होम्योपैथ विद कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक्स। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह से, होम्योपैथी के डॉक्टर, स्पेशलाइज्ड इन ऑल एक्यूट क्रॉनिक डिजीजेज एंड मैन वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, और डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, मेनोपॉक्स मेनोपॉज, इसके साथ साथ स्लीप disturbances, migraines, hair losses, weight gain, asthma, autism, allergy, arthritis, acne and high blood pressure, हर्ष के कोई भी बीमारी हो आपको और आपने अगर होम्योपैथी का इलाज करवाना हो तो आप पहुंच जाइए कुलदीप सिंह साहब, डॉक्टर कुलदीप सिंह, केडी होम्योपैथिक, ये आपको मिलेगा 20 मैरिटाइम्स बुलेवार्ड इन ब्रैम्पटन, ये क्वींस एंड एयरपोर्ट के कॉर्नर पर जो प्लाजा है उस प्लाजा में मिलेंगे इन ब्रैम्पटन में। आप इनकी वेबसाइट पर चले जाइए www.kdhomeopathics.com kdhomeopathics.com पे जाके सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप यहां से ले सकते हैं। इसके साथ साथ फजल वदूद की बात करते चलो सर, फजल वदूद का ताल्लुक इंश्योर प्रो से है, 25 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस एंड अंडरराइटिंग एक्सपीरियंस। इसके साथ साथ अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवानी हो तो आप इनसे भी एक दफ़ा बात कर सकते हैं साहब। फजल वदूद 6472864285 इनका फ़ोन नंबर है। बात करते चलूँ पेंटिंग की, अगर आपने घर पे या कमर्शियल पेंटिंग करवानी हो तो भाई आप रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल पेंटिंग के लिए, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पेंटिंग के लिए आप वेरी अफोर्डेबल प्राइसिंग में आपका करके देंगे। हाउस पेंटिंग हो, वॉलपेपर रिमूवल हो, इसके साथ साथ रिमूव स्टक हो, रिपेयर सीलिंग, रिपेयर ड्राई वॉल्स, क्लीन वर्क, सीनियर डिस्काउंट मिलेगा आपको, अगर आप सीनियर्स हैं तो आपको सीनियर्स का डिस्काउंट मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं सलीम सिद्दीकी का, सलीम सिद्दीकी वेरी एक्सपीरियंस पर्सन डूइंग पेंटिंग फॉर मेनी ईयर्स। सलीम सिद्दीकी का फ़ोन नंबर आप नोट कर लें किसी भी कस्म की पेंटिंग के लिए, 6472711974 इनका फ़ोन नंबर है। और साहब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 वेरी बहुत ही अच्छा वर्ल्ड कप, इंटरेस्टिंग इन पूरी दुनिया में बेइंतहा लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने देखा ये क्रिकेट वर्ल्ड कप, मगर आखिर में मुँह ज़रा खट्टा सा हो गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के सनसनीखेज फाइनल के बाद एक नई बहस मैदान में आ गई है, आईसीसी से बेहतर तो गली क्रिकेट के कवायद हैं, स्ट्रीट क्रिकेट जो है ना उसके। क्रिकेट का आलमी कप तो इतवार की शब लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में अख्ताम पजीर हो गया, लेकिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले गए सनसनीखेज मैच से एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। ये कैसी जीत है? कहते हैं कि दोनों टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आईं, एम्पायरों समेत हर किसी को स्कोर बोर्ड पर दोनों का स्कोर भी एक ही नज़र आया, लेकिन एक ने वर्ल्ड कप उठाया और दूसरी चुपचाप चली गई। व्हाट अ फिनिश! शायद यही वजह है कि शायकीन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफगानिस्तान तक और इंडिया से लेकर जनूबी अफ्रीका तक यही दो सवाल पूछते नज़र आ रहे हैं, ओवरथ्रो का कानून क्या है और इंग्लैंड को 6 रन मिलने चाहिए थे या 5। अगर सुपर ओवर के नाम पर स्कोर बराबर हो तो एक टीम को दूसरी पर कैसे फातह करार दिया जा सकता है? आईसीसी का बाउंड्री कमीशन फिर काम दिखा गया और इंग्लैंड को सबकत दिला दी, लेकिन कवायद तो कवायद होते हैं। बाउंड्री फार्मूला न्यूजीलैंड की नाव भी पार कर सकता था अगर गुप्तल ने आज आर्चर को निशाम जैसा मजा चकाया होता तो। ये वाक़या इस वक्त पेश आया था जब इंग्लैंड के बैट्समैन बेन स्टोक्स और आदिल रशीद अपने सुपर ओवर में रन लेने के लिए दौड़े और न्यूजीलैंड के फील्डर मार्टिन गुप्टल की थ्रो पर दूसरा रन लेते हुए बेन स्टोक्स ने डाइव लगाई, गेंद उनके बल्ले से लगकर बाउंड्री पर चली गई और अंपायर्स ने 6 रन दे दिए। इस वक्त किसी ने इस बात का एहसास नहीं किया कि कानून क्या कहता है और क्या बेन स्टोक्स के स्कोर में 6 रन ही देने चाहिए थे, लेकिन बाद में इस पर एक बहस छिड़ गई जिसमें ऑस्ट्रेलिया के साबिक अंपायर साइमन टॉफल और दीगर साबिक क्रिकेटर भी शामिल हो गए। अपने ज़माने में दुनिया के सफ़े अव्वल के अंपायर समझने वाले ऑस्ट्रेलिया के साइमन टॉफल का कहना है कि अंपायरों कुमार धर्मेसानी धर्मासीना और इराजमस से गलती हुई है, इन्हें इंग्लैंड को 6 नहीं बल्कि 5 रन देने चाहिए थे और गलती फील्डर के थ्रो की टाइमिंग की है اوور تھرو کا عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب فیلڈر گیند تھرو کرنا شروع کرتا ہے. امپائر کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ بیٹسمین کہاں ہیں. پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر بازید خان کا کہنا ہے کہ اس بارے میں امپائر غلطی پر تھے, کیونکہ جب مارٹن گپتل نے تھرو کی تھی اس وقت دونوں بیٹسمینوں نے دوسرے رن کے لیے ایک دوسرے کو کراس نہیں کیا تھا, اور اس صورتحال پر امپائر کو 6 کے بجائے 5 رنز دینے چاہیے تھے. بازید خان نے بتایا کہ کرکٹ کے قوانین اس بارے میں بالکل واضح ہیں کہ وہی رن تسلیم کیا جاتا ہے جس میں بیٹسمینوں نے ایک دوسرے کو کراس کر لیا ہو. بازید خان کا کہنا ہے کہ جب قوانین کے بارے میں کوئی غیر معمولی صورتحال سامنے آتی ہے اسی وقت قوانین کی کتاب کھول کر دیکھی جاتی ہے. بازید خان کی طرح راشد رتیب بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تھرو ہو رہی ہو اور اگر بیٹسمین نے ایک دوسرے کو کراس نہیں کیا ہو تو وہ رن نہیں ہوگا, اور فائنل میں جو کچھ ہوا وہ یہی تھا کہ لیکن اس بارے میں کرکٹ قوانین میں یہ بات واضح طور پر موجود نہیں ہے. راشد لطیف کا کہنا ہے کہ 2000 میں ان کے ساتھ بھی تقریباً اسی طرح کی صورتحال ہوئی تھی کہ وہ بیٹنگ کر رہے تھے کہ ایک تھرو ان کے بیٹ سے لگ کر باؤنڈری پر چلی گئی تھی اور امپائر نے چوکا دے دیا تھا کیونکہ وہ بیٹ دانستہ نہیں لگا تھا. راشد لطیف کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بین سٹوکس نے دانستہ بیٹ نہیں لگایا جو چوکا ہوا, اگر ایسا ہوتا تو وہ یقینی طور پر ابسٹریکٹنگ دی فیلڈ یعنی فیلڈ میں رکھنا اندازی پر آؤٹ دے دیے جاتے. ورلڈ کپ کے جو قواعد و ضوابط مرتب کیے گئے تھے ان کے مطابق یہ بات پہلے سے طے تھی کہ اگر فائنل ٹائی ہوا تو اس کا فیصلہ سپر اوور کی بنیاد پر ہوگا. ساتھ ہی یہ بات بھی پہلے ہی سے طے کی جا چکی تھی کہ سپر اوور بھی ٹائی ہونے کے صورت میں فاتح ٹیم کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کس ٹیم نے زیادہ باؤنڈریز لگائی ہیں. اس ورلڈ کپ میں رن ریٹ کے قانون پر بھی خاصی بحث ہو چکی ہے جس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم سیمی فائنل تک رسائی حاصل نہ کر سکی. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے 11-11 پوائنٹس تھے لیکن رن ریٹ کی بنیاد پر نیوزی لینڈ کی ٹیم نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا تھا. اگرچہ رن ریٹ کی بنیاد پر فیصلے کا طریقہ پہلے سے راؤنڈ کپ کے ورلڈ کپ کے قوانین میں موجود تھا, لیکن شائقین اور بیشتر ماہرین کا یہ خیال تھا کہ چونکہ یہ ورلڈ کپ گروپ میچوں کی بجائے لیگ کی بنیاد پر تھا لہٰذا اس میں رن ریٹ کے بجائے فیصلہ ہیڈ ٹو ہیڈ نتیجے کی بنیاد پر ہونا چاہیے تھا کہ اگر دونوں ٹیموں کے پوائنٹس برابر ہیں تو یہ دیکھا جاتا کہ ان کے آپس میں میچ کا نتیجہ کیا تھا. سوشل میڈیا پر تو اب یہ جیت ایک ایسا متنازع ٹرینڈ بن گیا جس میں آئی سی سی کے قواعد صارفین کے ہدف پر ہیں. ایک صارف مان سنگھ نے لکھا کہ ان قوانین سے تو گلی میں کھیلی جانے والی کرکٹ کے قواعد اچھے ہیں. سابق آسٹریلین کرکٹر بریٹ لی نے بھی ایسے شائقین کا حوصلہ بڑھایا جب انہوں نے بھی اپنے ایک پیغام سے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے قواعد بدلنے پر زور دیا. کرکٹ کا ایک دیوانہ تو اپنی بات سمجھانے کے لیے سب کو ایک بار پھر اسکول کے اس کمرے امتحان میں لے گیا جہاں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ نامی دو طالب علم کھڑے ممتحن سے بحث کر رہے ہیں کہ دونوں کے نمبر 4 ہی ہیں, لیکن ممتحن کہتا ہے کہ انگلینڈ پاس ہو گیا ہے کیونکہ انگلینڈ نے 4 نمبر کے سوال کا جواب دیا ہے جبکہ نیوزی لینڈ نے 2-2 نمبر والے سوالات کے درست جواب دیے, اس لیے ان کے 4 نمبر ہیں مگر وہ ہار گیا. زیوا شاہ کے نام سے صارف نے لکھا کہ فائنل میچ کے نتیجے نے تو کرکٹ کی سپر اسپرٹ کو تباہ کر کر رکھ دیا ہے. انوک کمار کہتے ہیں کہ آئی سی سی کی نظر میں 100 کے 1 نوٹ سے بہتر ہے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ بھی ہوا ٹورنامنٹ واز ایکسلنٹ ٹورنامنٹ, دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. پورے جتنے بھی کرکٹ کے شوقین ہیں انہوں نے بہت انجوائے کیا, دے ہیڈ اے ونڈرفل ٹائم. مگر جہاں تک کہ اس کا تعلق ہے کہ یہاں پر کس طریقے سے ڈیسائیڈ ہوگا, چاہے وہ سیمی فائنل ہے یا سیمی فائنل میں آنے کی ٹیمیں ہیں, سیمی فائنل فائنلس جو بھی میچ, ہر میچ از ویری امپورٹنٹ, تو اس کی جو ڈیسیشن ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہار جیت کے بیس پہ ہونی چاہیے, نہ یہ کہ کس طریقے سے آپ یہاں پہنچے, آپ کا رن ریٹ کیا تھا. نو آئی ڈونٹ بلیو دیٹ رن ریٹ کا, और यहाँ पे कि आपने कितनी बाउंड्रीज मारी हैं. आई मीन आई वॉज वॉचिंग द वर्ल्ड कप जब फाइनल था ना, मैंने सारी मैचेस देखे, मगर वर्ल्ड कप का जो मैच, जो फाइनल का मैच था, वो हम बड़े अच्छी तरह देख रहे थे. एंड इट वॉज सच ए इंटरेस्टिंग मैच कि 241 बोथ टीम्स हैड 241. उसके बाद साहब 15 रन एक टीम ने बनाए, दूसरी टीम ने भी खेच तान के 15 रन बना लिए. अब जब दोनों टीमों के 15-15 रन हैं तो हाउ कुड यू गिव somebody हैज टू स्कोर 16 रन्स. एक रन ज़्यादा बनाना चाहिए था. मैं ये नहीं कह रहा कि ये नाइंसाफी हुई, नाइंसाफी नहीं, मगर रूल जो है, रूल वॉज वेरी रॉन्ग. एक कॉल लेता हूँ. जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
जी वालेकुम सलाम.
जी सर.
जी अपने मजीद भाई, देखें ये वर्ल्ड कप का फाइनल कई सवाल छोड़ गया है.
हाँ,
जो 6 रन भी थे वो तो इंग्लैंड, पहली तो बात है कि 6 रन है नहीं थे.
नहीं, 6 रन थे, 5 रन थे वो.
पांच रन नहीं थे, वो ही है कि जो है ना इंग्लैंड को जिता गए.
सही.
दूसरा जो सुपर ओवर होता है वो सुपर ओवर नहीं होना चाहिए, बाद में पांच ओवर का एक जो ना होना चाहिए.
ठीक.
पांच ओवर दोनों टीमों को देने चाहिए. देखिए जैसे हॉकी में है, हॉकी में वो 15-15 मिनट का होता है ना, जो आप कर देते हैं फिर.
सही.
जो जब एक जो है ना इक्वल होता है स्कोर, तो ये सुपर ओवर का एक सिस्टम खत्म कर दे, बाद में जो ऐसी की सिचुएशन होती है पांच ओवर दे दो.
बहुत शुक्रिया सर.
उसमें एक जो है ना जो भी है कि वो जीता वही सिकंदर बर्क है. एनीवे ये दोनों की ट्रॉफी है, न्यूजीलैंड की भी ट्रॉफी है और एक इंग्लैंड की भी एक ट्रॉफी है.
सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी मेहरबानी. जी नेक्स्ट कॉल. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
माजिद भाई अस्सलाम वालेकुम.
जी सर.
भाई आपने पंडोरा खोल दिया कि ये सारी चीजें हुई हैं जो गलत हुई हैं.
सही.
मैं आपकी बातों को बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मसला ये है कि कितनी सारी टीमें थी, हर टीम की मुल्क की एक क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन थी और ये सारे रूल पहले बने हुए थे ना.
सही.
या नहीं बने हुए थे?
सही.
बने हुए थे ना, तो मेरे भाई ये सारे रूल बने हुए थे जब मौजूद थे, तो अब इतराज करने के बजाय इन रूलों को क्यों ही चेंज करवाया?
यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे. मेरा भी कहने का मकसद मेरे भाई यही है कि रूल्स बने हुए थे और पहले से बने हुए थे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन रूल बनाया, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये रूल्स जो हैं ये इतने गलत रूल्स हैं कि किसी एक टीम को जीतना चाहिए रन के बेस पे.
मत ये बिल्कुल एग्री करता हूँ.
सही बात.
लेकिन इसको क्यों नहीं चेंज करते? या तो इन लोगों को था ही नहीं कि ऐसा कभी होगा.
हाँ ये बात भी है, ये बात भी आपकी सही है कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा कैसा होगा.
ठीक है ना. अच्छा वो जो 6 रन बने वो जो साहब है भाई, वो 6 रन भी रूल के मुताबिक है ना, कोई उसने जानबूझ के तो नहीं किया?
नहीं, वो रूल के मुताबिक नहीं है सर. रूल ये होता है, वो रूल तो मुझे भी पता है सर. वो रूल ये होता है कि
ओवर थ्रो रख के बाउंड्री में चली गई.
नहीं, मगर वो दूसरा रन जो है ना वो काउंट नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं क्या रूल है कि जब आपने फील्डर ने फील्ड किया है और उसने थ्रो कर दी है, अगर दोनों बैट्समैन एक दूसरे को बीच क्रीज में क्रॉस कर चुके हैं तो रन काउंट होता है. अगर क्रॉस नहीं किया तो वो रन कर नहीं किया था.
दो रन तो पहले बना चुके थे.
नहीं, वो क्रॉस नहीं किया था उसने. खैर
जब तक तो वो क्रॉस कर चुका था.
अच्छा,
वो पहुंचा है उसको, बॉल तो बाउंड्री के बाद गई है.
अच्छी बात, चले सही, आप सही है. यू आर राइट सर. बहुत शुक्रिया.
वो तो बाई चांस है ना, वो वही तो किस्मत है. लेकिन बाकी जो चीजें हैं जो लोग शोर मचा रहे हैं, तो वो तो पहले से वो इतने बड़े बड़े मौजूद है जो लाखों करोड़ों रुपए दंड लेते हैं, तो इन्होंने ये सारे रूल चेंज करवाए भाई.
सही बात है, आप सही कह रहे हैं, एकदम 100% यू आर राइट, आई एग्री विद यू. जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
जी अस्सलाम वालेकुम.
जी वालेकुम सलाम.
जी सर, कैसे हैं आप? ठीक
है अल्हम्दुलिल्लाह.
हाँ, जस्ट ये सारे वरी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, मैं वरी कर रहा हूँ पाकिस्तान की. और जो चोर हैं, डाकू हैं, उनका कोई पैसा हमारे घर में आ जाए, गरीब लोग को कोई साफ पानी मिल जाए, डैम मिल जाए, कुछ बन जाए, वो तो लूट के बैठे हैं, ऐश कर रहे हैं, उनकी आने वाली नस्लें भी ऐश करेंगी, उनकी आने वाली भी नस्लें ऐश करेंगी, और वहाँ पाकिस्तान में गरीब आदमी के पास पानी नहीं है, छत नहीं है, और महंगाई कर दी इन्होंने, इनकी वजह से पाकिस्तान को लूट के, इनकी शामत कभी इनको हाईलाइट किया करें, अल्लाह आपको जजा देगा
इंशाल्लाह। सर आप मैं जैसे सब्र तहमुल से काम ले रहा हूँ, मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि सब्र तहमुल से काम लें इंशाल्लाह। ये जिसने दुनिया में ऐसी हरकत की है ना, तो उसको उसका सिला हम क्या देंगे, अल्लाह सुब्हान तआला खुद उसका सिला देंगे, और वैसे भी सिला मिलेगा उनको। ये जो गवर्नमेंट आई है इसको थोड़ा सा टाइम दें, ये उनका उनको सबको पकड़ेंगे, जितने भी हैं उन सबको पकड़ेंगे, उन सबको सिला मिलेगा।
आप कुछ भी नहीं कर सकते, अब तो आप तो जानते नहीं, मगर मैं जानता हूँ उन्होंने इतना लूटा है, मान से इतना लूटा है कि ये पूरा इंग्लैंड खरीद सकते हैं, ये जरदारी और नवाज शरीफ फैमिली, ये कड़े कड़े तेरे और मेरे।
आप ये मुझे बताएं, आप ये मुझे मेरे मेरे एक सवाल का जवाब दें, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपको $25 मिलियन दे रहा हूँ आज, मगर आपने पूरी अगली ज़िंदगी जो है वो आपने एक जेल के कूटे में गुजारनी है, क्या आप मान लेंगे बात?
सवाल ही नहीं पैदा होता।
बस ठीक, तो ये इनके पास अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं तो वो उस पैसे का क्या फ़ायदा है, क्योंकि वो जो है वो तो खुद ही सब कहाँ हैं अभी आजकल, वो कह रहे वो इस बात के लिए, वो इस बात के लिए रो रहे हैं कि भाई हमें घर का खाना दिला दो। देख ही लेना आप, दो रोटी, घर की दो रोटी के लिए वो तड़प रहे हैं, तो ऐसे पैसे का क्या फायदा है बताएं आप मुझे, कि क्या 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 कर लेंगे आप इतने पैसे का, कोई पैसा काम आएगा किसी को तो बात ही है ना। तो ये लोग को यही तड़प तड़प के ये लोग करेंगे जिन्होंने कुछ किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इन्होंने कुछ किया है क्योंकि अभी तक डिसाइड, हाँ जो जिस इंशाल्लाह वेट करें साहब, इंतजार
आंसर की और इनको हाईलाइट जरूर करें ये
इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह।
कोई तलक नहीं आपका, किसी की कोई तलक नहीं, हमारा पाकिस्तान से तलक है, मैं पाकिस्तान से, आप पाकिस्तान से, ये जो लोग बोलते हैं ये इनके कुछ ना कुछ ये उनके उनके लेना देना है, ट्रस्ट मी, इनके पास भी कोई पांचवा छवा हिस्सा है, और ये उनसे उनसे उनकी बनात पे यहाँ आए हैं और यहाँ के सिटीजन ली है, लूट लिया बेदर्जी से।
बड़ी मेहरबानी, आप अपना ब्लड प्रेशर ना हाई करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें आप, इंशाल्लाह हम और आप सब एक बोट में हैं, और जिसने भी पाकिस्तान के लिए कुछ किया है सर उसको उसका सिला मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत
जिंदाबाद, और आर्मी जिंदाबाद,
जिंदाबाद जी जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया आपका जी। क्विकली क्विकली कॉल देंगे जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी
वाजिद भाई, वो तो हो गई क्रिकेट पे बात,
हाँ
चले साहब ने बोला पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं, गुड, बहुत अच्छी बात
है। मैं तो क्रिकेट के लिए आया था सर इधर, आप लोगों ने पाकिस्तान की बात कर दी, चले क्या कहना है आपने?
मैं ये कह रहा हूँ कि वो हमारे साबिक चीफ जस्टिस साहब कहाँ चले गए, वो कह रहे थे कि मैं डैम बना के जाऊंगा, मैं डैम बनवाऊंगा, खड़े होकर खुद बनवाऊंगा, वो सारे पैसे और सारी चीजें किधर गई
भाई? अभी आएंगी ना, मतलब डैम मेरे जान कोई एक दिन में नहीं बन जाता है ना।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसकी अपडेट मिलनी चाहिए ना।
हाँ अपडेट मिलनी चाहिए, और मिलेगी इंशाल्लाह, जरूर मिलेगी। और
कितने कितने सारे शरीफ पढ़े लिखे डाकू जो हैं उस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में तो शरीफ और पढ़े लिखे डाकू ही तो होता है।
किसी पे तो एतबार करना पड़ेगा ना मेरे भाई, किसी
पे एतबार के लिए तो पहले साबित तो करेंगे, मुझ पे एतबार करो
इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
अभी पाकिस्तान में अच्छे और ईमानदार लोगों को तो खुड्डे लाइन लगा दिया जाता है, वो बेचारे बोल नहीं पाते।
हाँ सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप, मगर चंदा मेरे भाई किसी पे तो हमें इतबार करना होगा ना, थोड़ा सा टाइम देना होगा।
अच्छा, माजिद भाई एक और चीज भी है, जब आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बुला के जो आते हैं, हाँ, उनको बहुत आला किस्म का रेड कार्पेट देते हैं, बड़े आला किस्म की चीजें देते हैं, कभी उनसे आप लोगों ने नहीं पूछा कि मेरे भाई तुम लोग अच्छे लोग लाओगे कहाँ से, पहले खुद तो बताओ तुमने क्या किया। अभी कुछ दिन पहले किसी साहब आए थे, वो 35 साल से असेंबली में है, भाई 35 साल से तुमने किया क्या?
सही बात है, जरूर पूछना चाहिए हमें, जरूर पूछना चाहिए।
तुमने 35 साल से असेंबली में रहके किया क्या?
सही बात, हमें ये सवाल हमें जरूर करना चाहिए उनसे। बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
भाई भाई आप क्या कह रहे हैं कि जो बैन स्ट्रोक में जो शॉट खेला था, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, थक गया यार तुम्हारे। ये बताएं जो आप कह रहे हैं कि बैन स्ट्रोक में जो शॉट खेला है वो सिंगल रन काउंट होना चाहिए, क्यों?
वो मैं तो भैया वो जो अंपायर है ना,
मुझे आप हा?
ये अंपायर जो है ना यहाँ पर क्या था, मैं उसका मैं आपको अभी बताया था आपको मैं
श्रीलंकन
का। नहीं 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 नहीं, ये जो अंपायर है ना, ये मैं बताऊँ आपको, ये कौन है, टसल है ना, ये ना इसका बयान पढ़ के बता रहा हूँ मैं आपको कि वो साइमन टॉफल जो है ना, उसने कहा है कि अपने जमाने के में के दुनिया के सफ़े अव्वल के अंपायर समझने वाले ऑस्ट्रेलिया के साइमन टॉफल का कहना है कि अंपायरों कुमार धर्मासीना और इराजमस से गलती हुई है, इन्हें इंग्लैंड को 6 नहीं बल्कि 5 रन देने चाहिए थे।
5 रन कैसे देने चाहिए, जब उसने एक शॉट खेला, डबल रन के लिए भागा ना वो, क्रॉसिंग तो हो गई, जब उसने गुप्तिल ने बॉल फेंकी तो वो उसकी बैट पे लग गई, सो रन तो पूरा हो गया।
हाँ तो बस ये मैं तो उसका बयान पढ़ रहा हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो यार?
नहीं मार नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ, 6 रन हो गए ना ऑटोमेटिकली, अगर वो बॉल विकेट पे लगती तो आउट था, वो बॉल विकेट पे नहीं लगी, बैट पे लगी, क्या हो गया?
बट ठीक है, आप भी लस्सी पियो, मैं भी लस्सी पियूंगा, आप भी चाय पियो।
बाटली खुली हुई थी सारे
नहीं, वैसे मैं चंदा में एक बात बताऊँ, मेरा दिल खट्टा हो गया, मजा नहीं आया इसमें।
किसी सही है कि 5 ओवर देने चाहिए, 5 से 5 ओवर कम से कम देने चाहिए ताकि बंदा खुल के खेले
मतलब पता लगे, एक टीम को दूसरी टीम को हराना चाहिए यार,
हराना चाहिए
है ना। वहाँ हम बैठ के देख रहे हैं और हम बैठ के देख रहे हैं, अभी सुपर ओवर हुआ और उन्होंने कहा जी ओ खूब तालियां बज रही है, ड्रामे हो रहे हैं कि भाई वो इंग्लैंड जीत गया। मैंने कहां से जीत गया यार, कह रहे हैं वो बेस ऑन बाउंड्रीज, मेरा दिल खट्टा हो गया।
ये तो बीएस है
ये तो, मैं तो यार मैं खामखा के लिए इतनी सुबह सुबह उठा हुआ, इतना पूरा मैच देख रहा हूँ, पता लगा आखिर में वो कुछ भी नहीं हुआ, वो जीत गए, दिल वाकई में दिल खट्टा हो गया मेरा।
कोई बात नहीं, 4 साल
बाद देखेंगे। बहुत शुक्रिया। गोली गो। जी अस्सलाम वालेकुम।
हाँ जी माजिद भाई, वालेकुम सलाम, कैसे हो?
बखैर है जी, फर्स्ट क्लास।
मैं गुरमेल सिंह धीर बोल रहा हूँ।
बोलो बोलो।
अच्छा मैं ये बात बतानी चाहता हूँ कि कई शायद लोगों को ये नहीं पता होगा, 1957 या 58 में उन सालों में पाकिस्तान ने साउथ कोरिया को लोन दिया था।
हाँ सही।
तो पता नहीं आज क्या हो गया, बाकी ये पहले भाई साहब बोल के गए हैं हमें पता है पाकिस्तान को इतना लूटा कि आज उसकी मईशत इतनी इकोनॉमी खराब हो गई कि ये हाल हो रहा है। उस वक्त को याद करो जब पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को लोन दिया करता था।
सही बात है।
बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत दुख की बात है कि ये वो बेचारा गरीब, मेरी मोहब्बत गरीब लोगों से है।
सही बात है।
वो गरीब बेचारा पिस रहा है, जिसको दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही, भूखा मर रहा है, दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, ये तो अय्याश लोग अपनी अय्याशियां कर रहे हैं, शराबें ये पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ये लोग।
बहुत शुक्रिया गुरमेल जी।
हाँ जी
बड़ी मेहरबानी सर। क्विकली सर। हाँ जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी जी अजय भाई, लोग जरा पीछे परेशान है, देखिए सुपर ओवर वहाँ पे भी शुरू हुआ है, जो करप्शन लूटने वाले थे।
हाँ।
देखिए 2 साल दे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दूसरा ये जो फाइनल था माजिद भाई, जो एक कैच था उन्होंने एक पाँव उसका के अंदर था, एक बार था, बाल जो है ना हाथ में थी, उसने बाल एक फेंकी, दूसरा फील्डर उसने कैच कर लिया। ये कई सवाल है कि आने वाले टाइम पे जो है ना उठेंगे। दूसरा अपने जो डॉक्टर दरान साहब आते हैं उनसे ये तो पूछे, आप पाकिस्तान के बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच और एक सिलेक्टर वगैरह वो कौन आएंगे, कोई क्या नई चेंजिंग?
आज शाम को इंतजार कीजिए, मैं उनको एयर पे लेके आपसे बात कराऊंगा मैं।
ठीक है,
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट वन जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वन जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम माजिद भाई, ये जो बात हो रही है कल के मैच की
जी,
वो एक्स्ट्रा रन वाली, आई जस्ट वांटेड टू क्लेरिफाई द एक्चुअल पिक्चर कि ये डिसीजन क्यों लिया गया।
सही।
तो वो पहली बात ये कि जब बेन स्टोक्स ने हिट किया बॉल, बॉल फील्डर के पास गया है, उस दौरान दोनों बैट्समैन दे स्टार्टेड रनिंग, दे क्रॉस ईच अदर, ठीक है, दैट्स वन रन. इन द मीन टाइम वो जो फील्डर है उसने बॉल विकेट कीपर की तरफ फेंका है. जब वो फेंका है तो उस वक्त दोनों बैट्समैन जब वापस दौड़ रहे थे, दे हैड नॉट क्रॉस्ड ईच अदर येट. तो वो जब क्रॉस नहीं हुए तो इसलिए वो रन नहीं लिया जा सका.
सही बात.
तो वो जब बेन स्टोक्स ने डाइव ली, दिस इज सेम लाइक अ रन आउट, कि अगर विकेट कीपर पास पहुंच जाता है तो वो रन आउट हो जाएगा. जब रन आउट होता है तो वो रन नहीं मिलता. सो व्हेन ही डाइव्ड हिज बैट, मतलब उसके बैट को अगर बॉल लगा, डिफ्लेक्ट होकर बाउंड्री को चला गया. दैट्स व्हाई इट्स 5 रन्स एंड नॉट 6.
यू बेटर बिलीव इट, यू आर राइट, यू आर राइट सर.
वो पहले बड़े लोग कॉल कर रहे थे,
बहुत शुक्रिया आपका.
बेटर कॉल इन एंड क्लियर द एम्बिग्युइटी, इग्नोरेंस इज ब्लिस.
आई रियली अप्रिशिएट योर कॉल सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज. क्विकली सर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
जी अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई.
जी वालेकुम सलाम
माजिद भाई. ये भाई ने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया, जिस वक्त तक दूसरा मतलब रन क्रॉस नहीं करता एक दूसरे को बना, वो मतलब एक ही रन गिना जाता है.
सही.
तो ये उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, और आपने भी इन द बिगनिंग जो किया था एक्सप्लेन बिल्कुल ठीक किया था, मेरे ख्याल में लोग मिस अंडरस्टैंड कर रहे हैं.
बहुत शुक्रिया सर.
जी, और दूसरी बात ये है कि मैं एक पटवारी बोल रहा हूँ सर.
हाँ जी.
तो जी मैं पटवारी बोल रहा हूँ, और मेरे ख्याल में ये जो चैंपियनशिप दी गई है ये सिलेक्टेड चैंपियन है, ठीक है. जिस तरह लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में इमरान खान, तो इसी तरह मेरे ख्याल में ये भी.
नहीं 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 नहीं, आई डोंट एग्री विद यू विद दैट.
नहीं सर, मैं पटवारी हूँ ना, तो आप सोच सकते हैं ना फिर. तो जी जी, तो ये मेरा
नहीं, ये इसमें टीम का या प्लेयर्स का कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो इत्तेफाक से
जो मैं कह रहा था. लेकिन माजिद भाई यकीन करें कि ये मतलब अब आने वाली नस्लों को आप क्या बताएंगे कि ये जो लास्ट 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था, इंग्लैंड कितने रन से जीता था, राइट?
इंग्लैंड जीरो रन से जीता सर.
तो सर ये बात है कि ये इन्होंने बड़ा ब्लंडर किया. ये इसी तरह होना चाहिए था, मतलब अगर ये एक ओवर हुआ था तो ये नेक्स्ट फिर दोबारा एक ओवर का करना चाहिए.
एग्जैक्टली, टिल समबडी विंस. मैं तो ये कह रहा हूँ, जिस
ना करता,
हाँ,
उस वक्त तक इनको मतलब करना चाहिए था. जिस तरह होता नहीं है, आप देखिए सॉकर में होता है, हॉकी में होता है,
जब तक कोई जीते ना, जब तक गेम चलता रहता है. सारे स्पोर्ट्स में यही है, सारे स्पोर्ट्स में यही होता है. जब
तक ये थोड़ा सा मतलब
दिल खटा हो गया था
इसके ऊपर, मतलब कोई अच्छा नहीं डिसीजन किया. ये इनको आगे चलना चाहिए था, एक और ओवर करना चाहिए था, हो सकता है उसमें फैसला हो जाता. अगर नहीं तो इसके बाद दो या तीन
और इंटरेस्ट हो जाता सर.
हाँ जी, अगर ये लोकल मैच होता ना, एक आध मैच होता ना, तो और बात थी. ये फाइनल मैच था वर्ल्ड कप का,
इसमें ना उसमें और इंटरेस्ट पैदा हो जाता कि आप एक ओवर चलो फिर बराबर हो गए, फिर और साहब फिर करो फिर बराबर हो गए.
जब तक उस वक्त तक इनको चलना चाहिए था.
एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली. बहुत शुक्रिया सर.
बहुत आपका प्रोग्राम में बड़े से बाद मैंने सुना है, लेकिन बहुत मजा आता है आपका, बहुत ही म्यारी और खूबसूरत प्रोग्राम होता है. आफा बाजी भी बहुत ही खूबसूरत.
बहुत मेहरबानी सर आपकी, बड़ी मेहरबानी.
लेकिन आज उनको नहीं सुनाया, आज छुट्टी पे
अभी आ रही है, अभी आ रही है, वो किस मेहमानों के साथ बैठी हुई है, अभी आ रही है.
अच्छा चले, कीप इट अप. बहुत शुक्रिया प्रोग्राम है, और आप पाकिस्तान की सही नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पे, और आप इसी तरह पाकिस्तान का इमेज अच्छे तरीके से उभारते हैं, हम आपको सलूट करते हैं.
बहुत शुक्रिया.
पाकिस्तान का दुनिया में इमेज ऊपर कर रहे हैं, और आप इधर पाकिस्तान का, बाकी कुछ चैनल्स हैं जो कि पाकिस्तान का इमेज डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं.
अल्लाह ताला
उनको भी हिदायत दे. मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन बस यही कहूंगा.
ठीक है सर,
अल्लाह ताला कामयाब फरमाए.
हमें बस अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए. बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी मेहरबानी. क्विकली जी, अस्सलाम वालेकुम
माजिद भाई. वालेकुम
जी. वालेकुम सलाम.
ये पहला क्रिकेट पे तबसरा करता हूँ बाबा, इनको नेप के हवाले करो, इंग्लिश के इनके क्रिकेट टीम को, और साथ में जो वो एम्पायर थे उनको अच्छा। ताकि अर्शद मलिक इनकी तहकीकात वगैरह करे और कोर्ट में चलाए कि मामला क्या हुआ। दूसरा ये भाई एक कह के डैम डैम, तो ये डैम वाला ये जज पैसे खा के कहा भाग गया, दस दस पता नहीं कितने दस अरब अरब रुपीज इकट्ठे हुए, 13 अरब की एडवर्टाइजमेंट हुई और वो पैसा बजट में, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा मुझे पता है बजट एलोकेट करना पड़ता है, तो एलोकेट तो कुछ नहीं किया इन्होंने। तो जब तक के आप बजट में जो अभी बजट आया उसमें कोई एलोकेशन ही नहीं करी, तो ये जो खैरात चंदे वाली माफिया फिर रही थी, इन्होंने तो पाकिस्तानी लोगों को जैसे ये दोनों, और बड़ा अच्छा मजा मुझे आ रहा है कि ये दोनों राइट विंग पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, चाहे नून लीग वाले हों चाहे पीटीआई वाले हों, पहले उन्होंने कर्ज उतारो मुल्क संवारो, इन्होंने डैम का मामला, इन्होंने ये मामला। अब मुझे ये थोड़ी समझ में नहीं आ रही, जिलजिला आया परवेज मुशरफ के टाइम में और शहबाज शरीफ को पैसे मिल गए, बाद में ये कैसे हो सकता है यार।
अच्छी यार, बहुत शुक्रिया सर आपके पास
बाहर जाके
जरदारी साहब, मुझे मुझे खुशी होती है जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है ना। मैं कहता हूँ कि यहाँ के जितने भी अखबार नवीस और टीवी नवीस और यहाँ पर जितने, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कैनेडा में ना जितने अखबार नवीस हों या टीवी नवीस हों या रेडियो वाले हों, इन लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी इन्फॉर्मेशन डीप इनसाइड आपके पास इन्फॉर्मेशन है। मैं तो आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ सर, बहुत शुक्रिया आपका।
थैंक यू सर,
बहुत शुक्रिया, बहुत नॉलेज है सर आपके पास, बेइंतहा नॉलेज है, पता नहीं कहाँ से आती है आपके पास इतना। या तो आपके पास जो वहाँ पर जो कहना पाकिस्तान में जो एजेंट्स हैं वो सब आपके लिए काम कर रहे हैं, मतलब इतनी डीप इंफॉर्मेशन आपके पास, बहुत बहुत कमाल की बात है। जी अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम
जी।
वाजिद भाई मुझे ये पूछना था, पहले तो इंग्लैंड वालों को बहुत मुबारक हो।
हाँ जी।
ये फाइनल जो जीती सुपर ओवर का, ये रिजल्ट किस तरह उन्होंने किया था?
सुपर ओवर का रिजल्ट नहीं आया, सुपर ओवर पे तो दोनों के पास 15-15 रन हो गए ना, तो वो जो गेम में जो 15 सबसे ज्यादा बाउंड्रीज जिसने मारी वो टीम जीत गई। इत्तेफाक से वो बाउंड्रीज जो थी चौके और छक्के वो जो है वो इंग्लैंड ने ज्यादा मारे थे, तो उस बेस पे वो जीत गए।
अच्छा ठीक है, इंग्लैंड ने दो मारे थे, दो चौके मारे थे, उन्होंने एक छक्का मारा था।
अच्छी बात,
ठीक है जी,
बहुत शुक्रिया।
मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ
जी,
आप ये देखें कि गुप्त और जो आखिरी जो स्टॉक जो खेलने के लिए गुप्त ने जिस तरह सुपर ओवर की लास्ट बॉल खेली, आई डोंट थिंक सो कि ये इस तरह का प्लेयर है।
सही सही कहा आपने,
ठीक है, इसके लेके ये या तो मैच को उन्होंने इस तरह किया कि लोगों को पता भी नहीं चले और इंग्लैंड को जीता। इसके लेके मैं शुरू दिन से मैंने अपने दोस्तों को कहा था इंग्लैंड, आप यकीन नहीं करें, शुरू दिन से फर्स्ट डे से मैंने कहा था इंग्लैंड को ये फाइनल जिताएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। 1887 से इंग्लैंड क्रिकेट खेल रही, 1887 और आज तक कोई बड़ा टाइटल नहीं जीते।
हाँ मगर दैट इज ओके, मगर अब मेरा ख्याल नहीं कि हमें ये बातें शुरू करनी चाहिए अब। नहीं, इंग्लैंड इंग्लैंड जीत गया, जिस तरीके से जीता वो सही नहीं था, मगर दे वान उन्होंने
माशाल्लाह। आपने पाकिस्तान बहुत क्रिकेट के लिए, मैंने आपको बताया था, आपसे मेरी उस दिन बात भी था, आप तो बलूच के साथ रिस्ट्रिक्शन के ट्रायल भी देने के लिए गए थे।
हाँ
ठीक है, आपने उस दिन मेरी काफी आपसे बात हुई थी, मैंने कहा था मैं गुरु मंदिर पे रहता था। तो माजी तो देखिए जिन्होंने थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है ना, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, हमने भी थोड़ी बहुत, हमारे कैप्टन का प्रिंस असलम खान बापू, शायद आपने नाम सुना होगा, 12 किस्म के लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर, ठीक, हमारे कोच उस दिन हमारे साथ बासित अली वगैरह सब साथ खेलते थे, ठीक है। तो जिन्होंने थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली उनको देखने से अंदाज हो जाता है, क्रिकेट खेलना और क्रिकेट की नॉलेज रखना जमीन आसमान का फर्क है।
सही बात,
ठीक है ना वाजिद भाई,
सही
है। आदमी जो थोड़ी बहुत खेला और उसका कैप्टन, जिसमें जो मेरा कैप्टन मेरा कोच इतना सुपर इंसान था, ठीक है, जिसके बारे में ऑस्ट्रेलिया कीत मिलर भी आर्टिकल आया था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर बनाओ तो पाकिस्तान भेजे प्रिंस असलम के पास। जब इतना सुपर कैप्टन अगर जो नसीब से लोगों को मिलता है, अच्छा कैप्टन, अच्छा कोच, अच्छा सदर, अच्छा कुलीग, वो नसीब से आदमी को मिलता है, अच्छे नेबर, ठीक है, और उसने हमें सिखाने की बहुत कोशिश की, हमने थोड़ी बहुत सीखी, तो इतना तो आइडिया हो जाता है ना। आज माशाल्लाह 50 साल के हो गए, क्रिकेट खेल खेल के बुढ़े हो गए, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है ना आदमी को देखने से क्या हो रहा है गेम में।
बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी। एंड अगर रोरान मेरी सारी लाइंस अभी जली में, थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह ताला 6 बजे के बाद फिर हम आपकी लाइंस खोलेंगे एंड आपसे बातचीत जारी रहेगी, मगर 6 बजे के बाद मैं माजरा चाहता हूँ मेरी, क्योंकि सारी लाइंस जल रही हैं एंड आई डोंट वांट टू डू दिस, मगर हमारे स्पॉन्सर्स के पैगाम भी हैं, कुछ गीत नगमे भी सुनाने हैं हमको, और अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह फिर हम लाइंस खोलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। ये प्रोग्राम आपका है, सब आप ही लोगों की वजह से चलता है और आप ही लोगों से बातचीत करते हुए हमारे 6 घंटे यहाँ गुजरते हैं, 6 घंटे, जस्ट इमेजिन वी आर हियर फॉर 6 आवर्स, 6 घंटे हम आपके साथ रहते हैं और आप लोगों के कॉल्स, आप लोगों से बातचीत, आप लोगों का इनपुट, सब मिला मिलू के हम काम करते हैं यहाँ पर। तो एक पहले गीत हो जाए आज हम मोरे सैया जेब बंगश की आवाज़ में समाप्त फरमाइए, उसके फौरी बाद हम प्रोग्राम में वापस आएंगे और हमारे साथ हमारे स्पॉन्सर्स भी होंगे और हम उनसे भी बातचीत कराएंगे आपकी, मगर पहले चलें हम एक गीत, तो गीत के बाद फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रदीप जी से जो हमारे साथ हमारे मोहल्ले में बैठे हुए हैं। समाप्त फरमाइए जेब बंगश की आवाज़, आज आप मोरे सैया।
रंग रंग कोई हरा गुलाबी लाल, ये धरती मेरे पाँव की मेहंदी अंबर लाल गुलाल, ये मौसम मिलने का है फूलों के खिलने का है, आ जा रे मोरे सैया, आ जा रे मोरे रसिया, आ जा।
सवाल करम करेंगे जरूर, इस गीत को पूरा सुनाऊंगा मैं आपको, मगर इससे पहले एआर इंटरनेशनल की बात कर चलूँ साहब, आज का हाईएस्ट रेट इंटरनेशनल एआर इंटरनेशनल पे कहते हैं कि पाकिस्तान पैसे भिजवाए, एक कैनेडियन डॉलर का आपको मिलेगा 130 रुपये और 5 पैसे, एआर इंटरनेशनल, एआर इंटरनेशनल, ये आप कि अल्लाह भला करे साहब, एआर इंटरनेशनल आपको मिलता है 125 डंडास, डंडास एंड हिरन टारियो के कॉर्नर पर आपको एआर इंटरनेशनल मिलेगा पाकिस्तान भिजवाने के लिए, आज का रेट 123 रुपये और 5 पैसे। समाप्त फरमाइए खूबसूरत गीत।
मेरी जान पूछने पवन चकोरे आए हैं, मौसम मिलने का है फूलों के खिलने का है, आ जा रे मोरे सैया, आ जा रे मोरे रसिया, आ जा।
जगर जब तेरे रस्ते जाऊं मैं याद रखूं तुझको रसिया मैं किसी को याद ना आऊं ये मौसम मिलने का है फूलों के खिलने का है आ जा रे मोरे सैया आ जा रे मोरे रसिया आ जा आ जा आ जा
make my wedding perfect. I had exactly what I wanted and they made it possible.
जी हाँ, ये है ड्रीम कन्वेंशन सेंटर जिनके पास है तीन शानदार बॉल रूम्स, 50 से लेके 1300 अफराद के बैठने की जगह, हाई क्वालिटी इंटरनेशनल कुजीन, स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडियो विजुअल, इवेंट कोऑर्डिनेशन, हाईली ट्रेन स्टाफ, खास दिन को बनाए यादगार ड्रीम कन्वेंशन सेंटर के साथ। ऑनलाइन बुकिंग या फिर आ जाएं ड्रीम कन्वेंशन सेंटर, 75 हेजडेल रोड, ब्रैम्पटन, 905-451-1500, 905-451-1500।
सब के लिए एक खास ऐलान, अब पाकिस्तान जाए बगैर होगा काम, शादी हो, पार्टी हो या लेना हो फॉर्मल वेयर, तो एक ही नाम, शिफोन ब्राइडल कटोर। गेट 30% ऑफ ऑन ऑल ब्राइडल कलेक्शन एंड अप टू 50% ऑफ इफ यू गेट अ ब्राइडल एंड अ मेहंदी और मायो ड्रेस, एन अमेजिंग डिस्काउंट ओनली टिल दिस दिसंबर। बुक कीजिए अपॉइंटमेंट अस्मा अजमल के साथ एट 647-866-4274, 647-866-4274। Chiffon Bridal Couture at 8 Imperial Lakes Drive, Brampton.
जी सामने कराम, वेलकम बैक टू रेडियो साजो आवाज। 5:48 और 16 सेकंड हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे साहब प्रदीप जी से। एवरी मंडे प्रदीप जी मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद होते हैं। पहले तो इनका फोन नंबर आप नोट कर लें, سن لائف فائنینشلس کے ساتھ منسلک جناب پردیپ جی, 20 سال سے زیادہ وقت ہو گیا صاحب یہ ایک ہی کمپنی کے ساتھ منسلک ہیں, اور انشورنسز انویسٹمنٹس کی بات کرنی ہو تو آپ ضرور ایک دفعہ جناب پردیپ جی کو فون کریں اور ان کو انوائٹ کریں اپنے گھر پہ, اپنے بزنس پہ, یہاں پر ان کے آفس آ جائیں آپ, کسی طرح بھی ایک دفعہ ملاقات ضروری ہے. اور منڈے کو, ہر منڈے کو ہم ان کو بلواتے ہیں یہاں پر اپنے اسٹوڈیو میں اور فائن پرنٹس پہ بات کرتے ہیں, ویری فائن پرنٹس جس کو میں اور آپ وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ, وی ڈونٹ ٹیک اٹ ویری سیریسلی. آج جو ٹاپک ہے وہ پردیپ جی سے بات کریں گے, وہ بتائیں گے آج کس چیز کو بات کریں گے. یہ پردیپ جی, سب سے پہلے تو ویلکم ٹو ریڈیو سازو آواز, کیسے ہیں آپ سے؟
تھینک یو ویری مچ ماجد بھائی, مجھے پھر سے اپارچونیٹی دینے کے لیے, اور آپ کے سبھی سامعین کو میرا نمسکار, ست شری اکال, السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ٹاک شو ونس اگین.
ایز یوزول منڈیز کو آپ آتے ہیں تو آپ بتائیے پہلے کہ آج کس ٹاپک پہ آپ بات کریں گے.
آج ماجد بھائی ہم لوگ بات کریں گے ایک بار پھر سے کہ لائف انشورنس کے ڈسیزن لیتے سمے ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں بہت طرح کے ہیزیٹیشنز ہوتے ہیں, تو ہم اس پہ پھر سے غور کریں گے کہ وہ کس ٹائپ کے ہیزیٹیشنز ہوتے ہیں اور ان کا کیسے ان کو ہینڈل کیا جا سکے گا.
پردیپ جی, سب سے پہلے تو میں, آپ نے ہیزیٹیشن کی بات کی ہے تو میرے دماغ میں تو دو ہی چیزیں آتی ہیں, ایک یہ کہ پیسہ اور ٹائم, کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے پیسہ دینا ہے اس میں اینڈ سامنے تو ان کے فوری طور پہ کچھ نظر نہیں آ رہا, جیسے کہ آپ اسٹور میں گئے, آپ نے پیسہ دیا, کچھ خرید لیا.
جی,
تو یہاں پر یہ کہ آپ کے سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, تو ایک تو پیسہ ہو گیا, پھر دوسرا ٹائم, تو کیسے, مطلب یہ ہیزیٹیشن صحیح ہے یا آپ کو اور بھی کچھ؟
ہماری جو کمیونٹی ہے ماجد بھائی, اس میں لوگوں کے پاس پالیٹکس کے لیے, دنیا بھر کے بحث مباحثے کے لیے تو بے شمار وقت ہے, لیکن لائف انشورنس جیسی چیز کے لیے وہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس وقت کی بہت زیادہ تنگی ہے, ایسی ویسی نہیں, بہت زیادہ تنگی ہے وقت کی. اور ان کے دماغ میں دوسرا مغالطہ یہ ہے کہ لائف انشورنس معلوم کتنا مہنگا ہوگا,
صحیح,
جو وہ افورڈ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. تو ان دونوں آبجیکشنس یا ہیزیٹیشنس میں میں بس یہی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ اس میں نہ تو بہت زیادہ وقت لگتا ہے ڈسکشن میں, 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں بیسک معلومات فراہم کرنے کے لیے آپ لوگوں کو, اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ پیسہ نہیں لگتا. جو بھی آپ کا بجٹ ہے اس میں کچھ نہ کچھ آپ کے لیے آرگنائز یا ارینج کیا جا سکتا ہے. تو ایک, اگر آپ کے من میں بجٹ ہو کہ بھائی میرے پاس اتنے ڈالرز میں کچھ کام ہو جائے اور میرے پاس 25 سے 30 منٹ کا وقت ہے جس میں میں بیٹھ کے سمجھنا چاہتا ہوں, تو وہ دونوں چیز مناسب ہیں اور پاسیبل ہو سکتی ہیں آسانی سے.
416-894-5872 جناب پردیپ جی کا فون نمبر ہے. اور پردیپ جی, ہسبینڈ اینڈ وائف, کیا ضروری ہے کہ دونوں کو ایک وقت میں انشورنس لی جائے؟
ایسی کوئی کمپلشن نہیں ماجد بھائی. ہسبینڈ اور وائف وہ دو مختلف انڈیویجولس ہیں, اس لیے وہ دونوں ایک ساتھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن الگ الگ لیتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے ماجد صاحب. اور ساتھ ہی میں یہ بھی کوئی کمپلشن نہیں کہ دونوں کو ایک ہی ٹائپ کا انشورنس لینا ہے.
صحیح.
ہسبینڈ کے لیے, اگر ہسبینڈ مال نے کام کرتا ہے جس کے دار و مدار پہ سارا گھر چلتا ہے, وہ چاہے تو اپنے لیے بڑا انشورنس لے سکتا ہے, مثال کے طور پہ $1,000,000 کا. اور اس کی وائف وہ دیکھتی ہے کہ بھائی میں تو ہاؤس وائف ہوں, میجورٹی کوریج میرے ہسبینڈ کے پاس ہے, میرے لیے 600,000 کا انشورنس بہت ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. اسی قسم سے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وائف کہتی ہے کہ بھائی مجھے ایسا پلان چاہیے جو چھوٹا ہو پر جس میں سیونگس ہو, وہ ہو سکتا ہے. ہسبینڈ کہتا ہے کہ بھائی مجھے بڑا پلان چاہیے اور بہت سستا پلان چاہیے کیونکہ مجھے کوریج کی زیادہ ضرورت ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں ہی دو الگ شخصیات ہیں, دونوں کے لیے الگ الگ لائف انشورنس پالیسی, الگ الگ اماؤنٹس کی, الگ الگ ٹائپ کی, اور جس میں الگ الگ بینیفیشریز بھی ہم مقرر کر سکتے ہیں. ماجد بھائی
تو دو انڈیویجول ہے, دو انڈیویجول سیپریٹ پالیسیز
کمپلیٹلی, تو اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ ان کی جیسی ریکوائرمنٹ سے اس کے حساب سے بن گئی پالیسیز ایک ایک کی, اور جو ان کے بجٹ میں فٹ ہو رہی ہیں ان کی ضرورت پوری کر رہی ہیں, اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں. دو ایک کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ پالیسی پے اپ کرے گی اور دوسری پالیسی اپنے حساب سے چلتی رہے گی جیسے بنائی گئی ہے.
416-894-5872 جناب پردیپ جی کا فون نمبر ہے, سن لائف فائنینشل سے منسلک ہیں اور 20 سال سے ایک ہی کمپنی میں سے وابستہ ہیں سر. دیٹس اے ویری بگ کریڈٹ ٹو اینی باری ورکنگ فار دا سیم کمپنی فار 20 ایئرز, سیم جاب فار 20 ایئرز. پردیپ جی اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آف کورس جو بھی انشورنس پالیسیز لیتا ہے تو دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کلیم ٹائم.
بالکل بالکل,
کہ بھائی ان کا مقصد جو لینے کا ہے وہی ہے کہ کلیم ٹائم پہ ہمیں کوئی دشواری نہ ہو. تو ہاؤ ایزی اٹ از ٹو گیٹ دا کلیم منی؟
ماجد بھائی جیسا آپ نے فرمایا 20 سال سے اوپر ہو گئے, میں نے درجنوں ڈیتھ کلیمز ہینڈل کیے, اور سن لائف میں سسٹم یہ ہے کہ ایجنٹ ہی کلیم بناتا ہے. مجھے آج تک کبھی کوئی دقت نہیں ہوئی. ایک تو جہاں تک میرا سوال ہے, میں ایک ایک فیکٹ کو پراپرلی ریکارڈ کرتا ہوں, اس کے بارے میں سوال پوچھ کے ایکسپلین کر کے سوال پوچھتا ہوں, اور کسی کے لیے میں جھوٹ نہیں بولتا. ماجد بھائی
صحیح بات,
جو سچویشن ہے وہ ہی بیان اور پورا اس کا خلاصے کے ساتھ. تو میں کسی کے لیے جھوٹ نہیں بولتا, اور مجھے کلائنٹس بھی بہت اچھے ملتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ساتھ میں سن لائف کا بھی ایک بہت اسٹرانگ میسج ہے. پہلی بات تو یہ کمپنی لائف انشورنس ڈاکیومینٹس کو کلیم ٹائم پہ نہیں مانگتی. آپ تصور کریں آج کوئی 20 سال کا 25 سال کا نوجوان ہے جس کی ساری زندگی پالیسی چلنی ہے, تو 80-90% گھروں میں پالیسی ڈاکیومینٹس ماجد بھائی نہیں ملتے. وہ رینوویشن کے ٹائم پہ, وہ موومنٹ کے ٹائم پہ, وہ ایک گھر سے دوسرے گھر شفٹنگ کے ٹائم پہ غائب ہو جاتے ہیں. تو سن لائف ان پالیسی ڈاکیومینٹس کو نہیں مانگتی, جس سے بے مطلب کا وقت ضائع نہیں ہوتا بے مطلب میں. دوسری بات کیا ہے کہ کوئی بھی پالیسی کا کلیم ہم سبمٹ کریں تو اس کے اوپر انٹرسٹ دینا شروع کر دیتی ہے. تو جو کلیم ایڈجسٹرز ہوتے ہیں ماجد بھائی, ان کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے کہ آپ ڈیلے نہ کریں, فوراً کلیم سیٹل کریں, کیونکہ انٹرسٹ دینا کمپنی کے لیے نقصان کے برابر ہے,
صحیح,
لاس کے برابر ہے. تو اور ساتھ میں جو چھوٹی پالیسیز ہوتی ہیں اپ ٹو 50,000, جو کہ پہلے 20-30-40-50 سال پہلے 50,000 بھی بڑی رقم تھی, لیکن 50,000 کی پالیسی اگر کوئی بنی ہے اور ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس پہ کلیم بھی نہیں بنانا پڑتا ہم کو, صرف ڈیتھ سرٹیفکیٹ وہ بھیج دیں, سن لائف خود بخود ان کو چیک میل کر دیتی ہے. اور کئی لوگ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں بھیج پاتے, تو وہ صرف یہی بتا دیتے ہیں کہ فیونرل کہاں اور کس فون نمبر پہ ہو رہا ہے فیونرل ہوم کا. تو سن لائف خود ان سے فون کر کے پتا کر کے ویریفائی کر کے چیک بھیج دیتی ہے ماجد صاحب. تو اتنا شاندار سسٹم ہے, مجھے آج تک کبھی کوئی دقت نہیں ہوئی ہے.
416-894-5872 جناب پردیپ جی کا فون نمبر ہے. اور پردیپ جی میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ واٹ ہیپنز اف پیپل نیڈز چینج ان دا فیوچر؟
چینجز فیوچر میں تو ہونے ہی ہونے ان کے لیے, کیونکہ ہمارے فیملی سٹرکچر میں تبدیلی ہونی ہے, ہمارے گھروں میں تبدیلی ہونی ہے, ہمارے جو بینیفیشریز ہیں ان کی بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے ہم سے پہلے. آج کل طلاق بھی ہو جاتے ہیں, ہے نا, دوبارہ ری میریجز ہو جاتی ہیں, یا پلان ہمیں چینج کرنا پڑ سکتا ہے. کسی نے بیسک پلان لیا ہے ٹرم پلان, اس کو اپ گریڈ کر کے بڑا سیونگ والا پلان لینا چاہتا ہے, یا 10 لاکھ کا پلان لیا ہے, اب اس کی ضرورت کم ہوگی تو اس کو 4 لاکھ کرنا چاہتا ہے, وہ سب ہو سکتے ہیں اور سب ہوتے ہیں. اور زیادہ تر چینجز کی کوئی بھی فیس نہیں ہوتی ان سبھی چینجز کی, میں کہہ سکتا ہوں. تو چینجز تو چینج تو دنیا کا قاعدہ ہے, और सन लाइफ इसमें पूरा सपोर्ट करता है, इसीलिए मैं अपने जितने क्लाइंट्स हैं टाइम टू टाइम उनसे रब्ता करके उनसे मुलाकात करके रिव्यू करता हूं, ताकि उनके ऑप्शंस पॉलिसी के उनको फिर से याद दहानी कराई जा सके और कुछ चेंजेस की जरूरत है तो वो चेंज भी किए जा सके टाइमली।
4168945872 साहब इनका फोन नंबर है। और आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे?
आखिर में मैं दो एक छोटी छोटी चीजें बताना चाहूंगा। पहली बात तो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा अगर हमने प्रॉपरली बेनिफिशियरी को डेजिग्नेट किया है तो टैक्स फ्री होता है माजिद भाई, कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि ये पैसा क्रेडिटर प्रोटेक्टेड होता है, कोई नहीं इंसिस्ट कर सकता कि आपके हस्बैंड ने या आपके फादर ने प्लान लिया था उसमें से 20,000 हमें दे क्योंकि उन्होंने हमसे लोन लिया था या कोई कमिट किया था। और जो लास्ट में सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा सवाल है जो बेसिक मुद्दा है कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ये कभी डिसाइड नहीं कर पाते, तो इन सब लोगों से मैं एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक मिनट को अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि अगर ये आपकी जिंदगी का अगर आखिरी है और अब आपकी आंखें दोबारा नहीं खुलने वाली, तो क्या आप मुतमईन हैं कि आपने अपनी फैमिली का मुस्तकबिल प्रॉपरली महफूज कर लिया या नहीं?